लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे आप्रवासियों, शरणार्थियों और युद्ध से प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि शिक्षा पाने के उनके अधिकार का सदैव सम्मान किया जाए, जो एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महाकिर्च घर के प्रांगण में रविवार 19 जनवरी को पोप फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व अपने संबोधन में उन्होंने काना में विवाह भोज के समय प्रभु के प्रथम चमत्कार पर चिंतन करते हुए विश्वासों को याद दिलाया कि जब हमारे पास किसी चीज की कमी हो जाती है तो प्रभु उसमें लबालब भरना चाहते हैं, क्योंकि वे हमारे साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। उन्होंने विश्वासों को संबोधित कर कहा,
cari fratelli e sorelle, buona domenica.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
Il Vangelo della liturgia di oggi ci narra il primo segno di Gesù quando trasforma l'acqua in vino.
आज के धर्मविधि का सुसमाचार पाठ हमें यीशु के पहले चमत्कार के बारे बतलाता है, जब उन्होंने गलीलिया के काना में एक विवाह भोज के दौरान पानी को दाखरस में बदल दिया था।
Si tratta di un racconto che anticipa e sintetizza tutta la missione di Gesù.
यह एक ऐसी घटना है जो यीशु के संपूर्ण मिशन का पूर्वाभास कराता और उसे सारगर्भित करता है। क्रिस्त के आगमन के दिन, जैसा कि नबियों ने कहा है, प्रभु एक उत्तम भोज तैयार करेंगे जिसमें बढ़िया अंगूरी परोसी जाएगी एवं पहाड़ों से नए अंगूर का रस टपकेगा। संत पापा ने कहा, यीशु ही दूल्हे हैं जो अपने प्रेम का नया रस लाते हैं। इस सुसमाचार में हम दो चीजें पा सकते हैं, अभाव और अधिकता। एक ओर दाखरस खत्म हो जाता है और मरियम अपने बेटे से कहती हैं, उनके पास दाखरस नहीं है। दूसरी ओर यीशु 6 बड़े घड़ों में भरे पानी को दाखरस में बदल देते हैं और अंत में दाखरस इतनी प्रचुर और उत्तम होती है कि भोज का स्वामी प्रशंसा करता है एवं दूल्हे से पूछता है कि उसने उसे अंत तक क्यों रखा। वास्तव में हमारा चिन्ह हमेशा अभावग्रस्त है, लेकिन ईश्वर का चिन्ह हमेशा अधिकता से पूर्ण और काना की अधिकता इसका संकेत है। संत पापा ने कहा, मनुष्यों के अभाव की स्थिति पर ईश्वर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? उन्होंने कहा, वे अपने प्रेम की अधिकता के साथ उत्तर देते हैं। ईश्वर कंजूस नहीं है, जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। हमारी कमियों का जवाब प्रभु अपनी प्रचुरता से देते हैं।
Dunque, il segno nostro sempre la mancanza.
इसी तरह हमारे जीवन के उत्सव में कभी कभी हमें एहसास होता है कि दाखरस समाप्त हो रहा है, हम में ताकत की कमी हो रही है और कई अन्य चीजें घट रही हैं। पोप ने कहा कि ऐसा तब होता है जब हमें परेशान करने वाली चिंताएं, हम पर हावी होने वाले भय या बुरी शक्तियां हमारे जीवन के स्वाद, आनंद और आशा के स्वाद को छीन लेती हैं। लेकिन उन्होंने कहा, इस कमी का सामना करते हुए जब प्रभु हमें देते हैं तो वे बहुतायात से देते हैं, या एक विरोधाभास जैसा लगता है। हमारे पास जितना कम होता उतना ही अधिक मात्रा में प्रभु हमें देते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ उत्सव मनाना चाहते हैं, एक ऐसा उत्सव जो कभी समाप्त नहीं होगा। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, तो फिर आइए हम कुंवारी मरियम से प्रार्थना करें, जो नई अंगूरी की नारी हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। वे इस जयंती वर्ष में हमें प्रभु यीशु से मिलने की खुशी को फिर से पाने में मदद करें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Angelus Domini, nunzia Ave Maria.
Concepite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedito frutto ventris tui, Jesus. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने गजा में युद्ध विराम लागू होने की खुशी जाहिर करते हुए सभी मध्यस्थों के प्रति अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा,
Nei giorni scorsi è stato annunciato che oggi entrerà in vigore il cessate in fuoco a Gaza.
हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि गजा में युद्ध विराम आज से लागू हो जाएगा। मैं सभी मध्यस्थों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। मध्यस्थता करना जिससे शांति स्थापित हो सके एक अच्छा काम है। मध्यस्थों को धन्यवाद और मैं इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में शामिल सभी पक्षों को भी धन्यवाद देता हूँ। इस अवसर पर अपनी आशा व्यक्त करते हुए संत पापा ने कहा, मुझे आशा है कि जो सहमति बनी है उसका दोनों पक्षों द्वारा तत्काल सम्मान किया जाएगा तथा सभी बंधक अंततः घर लौट सकेंगे और अपने प्रियजनों से मिल सकेंगे। मैं उनके और उनके परिवारों के लिए खूब प्रार्थना करता हूँ। मैं यह भी उम्मीद करता हूँ कि मानवीय सहायता गजा की जनता तक और भी अधिक तेजी से एवं अधिक मात्रा में पहुँचेगी, क्योंकि इसकी तत्काल आवश्यकता है। संत पापा ने आगे कहा, कि इसराइल एवं फिलिस्तीन दोनों को आशा के स्पष्ट संकेतों की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि दोनों देशों के राजनीतिक अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद से दोनों राष्ट्रों के लिए सही समाधान तक पहुंच सकेंगे। हर कोई बातचीत के लिए, मेल मिलाप के लिए और शांति के लिए हाँ कहे, और आइए हम समाज मेल मिलाप एवं शांति के लिए प्रार्थना करें। तत्पश्चात संत पापा ने क्यूबा की याद की, जहां कुछ कैदियों को जयंती वर्ष के मद्देनजर रिहा कर दिया गया। संत पापा ने कहा, कुछ दिन पहले क्यूबा की जेलों से कैदियों के एक दल की रिहाई की घोषणा की गई। यह महान आशा का संकेत है जो इस जयंती वर्ष के उद्देश्यों में से एक को ठोस रूप देता है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले महीनों में हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की पहल करते रहेंगे, जिससे व्यक्तियों और लोगों की यात्रा में विश्वास पैदा होगा। उसके बाद संत पापा ने रोम, इटली तथा विश्व के विभिन्न हिस्सों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। उन्होंने ख्रिस्तीय एकता प्रार्थना सप्ताह की याद दिलाई तथा सभी विश्वासियों को ख्रिस्तीय एकता के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ख्रिस्तीय एकता के लिए प्रार्थना के इन दिनों में हम प्रभु के सभी शिष्यों के बीच पूर्ण सहभागिता के बहुमूल्य वरदान के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। साथ ही पोप ने पीड़ित यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल, म्यांमार और युद्ध से पीड़ित सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करने का आग्रह किया। और अंत में अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित
की।
के पास आओ, वो तुम्हें बुला रहा है। तुम मसीह के पास आओ, वो तुम्हें बुला रहा है।
पग पग दिए तुम्हारे हिली जला रहा है, वो दिए जला रहा है।
मसीह के पास आओ, वो तुम्हें बुला रहा है। तुम मसीह के पास आओ, वो तुम्हें बुला रहा है।
मसीह
पास आओ, वो तुम्हें
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने आज संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप की व्हाइट हाउस में अपने शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर संदेश भेजा। संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में आपके शपथ ग्रहण के अवसर पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देता हूँ कि सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको अपने उच्च कर्तव्यों के निर्वहन में बुद्धि, शक्ति और सुरक्षा प्रदान करें। अवसरों की भूमि और सभी के लिए स्वागत योग्य होने के आपके राष्ट्र के आदर्शों से प्रेरित होकर मेरी आशा है कि आपके नेतृत्व में अमेरिकी लोग समृद्ध होंगे और हमेशा एक अधिक न्यायपूर्ण समाज बनाने का प्रयास करेंगे, जहां घृणा, भेदभाव या बहिष्कार के लिए कोई जगह नहीं होगी। इस समय जब हमारा मानव परिवार युद्ध के संकट और कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, संत पापा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों के बीच शांति व मेलमिलाप को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों का मार्गदर्शन करें। इन भावनाओं के साथ संत पापा फ्रांसिस ने राष्ट्रपति डोनाल्ड और उनके परिवार एवं सभी देशवासियों पर ईश्वरीय आशीर्वाद की प्रचुरता की कामना करते हुए अपने संदेश को विराम दिया। और संत पापा फ्रांसिस ने वाटिकन के संत क्लेमेंटीन सभागार में अल्मो सेमिनरी कप्रानिका के सेमिनारियों, उपयाजकों, पुरोहितों, छात्रों और शिक्षकों का स्वागत किया। संत पापा ने दांते अलिगियरी के दिव्य कॉमेडी के पारादीसो से एक कविता उद्धृत करते हुए एक चिंतन का प्रस्ताव रखा, जिसमें संत थॉमस अक्विनास की आत्मा प्रचारकों के आदेश को एक वातावरण के रूप में संदर्भित करती है, जहां कोई अच्छी तरह से खाता है शाब्दिक रूप से वह मोटा हो जाता है। वह मोटा हो जाता है अगर कोई लक्ष्यहीन रूप से नहीं घूमता है। यह कथन कई समुदायों के लिए मान्य है और इसलिए आल्मो सेमिनरी कप्रानिका के लिए भी। यदि कोई अपना रास्ता नहीं खोता है तो वह खुद को अच्छी तरह से पोषित कर सकता है। संत पापा ने कहा कि यह सेमिनरी विविध समुदाय के लिए, जिनमें 19 विभिन्न धर्म प्रांतों के प्रतिनिधि हैं और जिनमें पवित्र विश्वासियों के एक और अनेक चेहरे की झलक मिलती है, ईश्वर के लोगों को प्रतिबिंबित किया जाता है। संत पापा उन्हें यह सलाह देते हैं कि ईश्वर के पवित्र विश्वस्त लोगों को न भूलें जो हम कलीसिया हैं, और यह न भूलें जैसा कि धर्मशास्त्र कहता है, यह विश्वास में अचूक है और यह कलीसिया मिशन के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करता है। उस मिशन का ध्यान रखें जिसके लिए यीशु ने आज कलीसिया को बुलाया है। इस मिशन को उस शैली में जिए जिसे हम उचित रूप से सिनोडल के रूप में वर्णित करते हैं। और संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को वाटिकन के कंसिस्ट्री भवन में फिनलैंड से आए ख्रिस्तीय एकता वर्धक प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। संत पापा ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वे इस वर्ष एक बार फिर संत हेनरिक के पर्व पर ख्रिस्तीय एकता वर्धक प्रतिनिधि मंडल के रूप में रोम आए हैं। संत पापा ने फिनलैंड के लूथरन, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स प्रतिभागियों की ओर से धर्माध्यक्ष मैटी सालोमाकी द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और भावनाओं के लिए अपना आभार व्यक्त किया। संत पापा ने कहा कि 2025 के इस पवित्र वर्ष में हम आशा के तीर्थ यात्री के रूप में एक साथ यात्रा कर रहे हैं। विश्वास की इस यात्रा पर हमें इब्रानियों के पत्र से पुष्टि मिलती है। हम अपने भरोसे का साक्ष्य देने में अटल और दृढ़ बने रहें, क्योंकि जिसने हमें वचन दिया है वह सत्य प्रतिज्ञा है। संत पापा ने कहा कि संत हेनरिक आशा के स्थायी प्रतीक थे, जिनका पक्का और स्थायी आधार ईश्वर में था। शांति के संदेश वाहक के रूप में वे हमें शांति के अनमोल लेकिन नाजुक उपहार के लिए प्रार्थना करने में दृढ़ रहने हेतु प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही फिनलैंड के संरक्षक संत ईश्वर प्रदत्त एकता के प्रतीक हैं, क्योंकि उनका पर्व दिवस विभिन्न कलीसियाओं और समुदायों के ख्रिस्तियों को ईश्वर की स्तुति करने के लिए एक साथ लाता है। संत पापा ने कपेला सांता मरिया गायक मंडली को उनके बहुमूल्य सेवा के लिए धन्यवाद दिया, जो उनके साथ रोम की तीर्थ यात्रा में शामिल है। संत पापा ने कहा कि जो कोई भी गाता है वह दो बार प्रार्थना करता है। इस संगीतमय स्वर में हम कह सकते हैं कि नीचे या धर्मसार, जिसे हम सभी साझा करते हैं, विश्वास का एक असाधारण स्कोर है, और यह सत्य की समता स्वयं प्रभु येसु मसीह हैं। वे सत्य के अवतार हैं, सच्चा परमेश्वर और सच्चा मनुष्य, हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता। जो कोई भी इस सत्य की समता को सुनता है, न केवल कानों से बल्कि दिल से, वह परमेश्वर के रहस्य से प्रभावित होगा, जो अपने पुत्र के प्रेम के माध्यम से हम तक पहुंचते हैं, और वह प्रेम उस आशा का आधार है जो कभी निराश नहीं करती। इस प्रेम की गवाही देना ही सभी बपतिस्मा प्राप्त लोगों का आह्वान है। अंत में संत पापा ने सभी से विश्वास के साथ अपनी अपनी भाषा में प्रभु की प्रार्थना का पाठ करने के लिए आमंत्रित किया, और संत पापा फ्रांसिस ने इतालवी टीवी चैनल नोवे के छे टेम्पो के फा के लिए फैब्रिसियो फाजियो को एक साक्षात्कार दिया, जिसमें उन्होंने घोषणा की कि सिस्टर रफायला पेट्रिनी को मार्च में वाटिकन सिटी राज्य के गवर्नरेट का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने प्रवासियों को निर्वासित करने की नई ट्रंप प्रशासन की योजनाओं की अफवाहों के बारे में एक सवाल का भी जवाब दिया, अगर ऐसा होता है तो यह एक अपमान होगा। समाज के असंतुलन का खमियाजा सबसे गरीब लोगों को नहीं भुगतना चाहिए, और गाजा में बहुप्रतीक्षित युद्ध विराम होते ही हजारों विस्थापित लोग कपड़े, टेंट और अन्य सामान लेकर अपने घरों की ओर वापस आने लगे हैं। कुछ मीडिया ने बताया कि हमास के लड़ाके दक्षिणी शहर खान यूनिस से गुजरे और भीड़ ने उनका उत्साह बढ़ाया, इससे पहले कि इस लंबे समय में प्रतीक्षित युद्ध विराम में देरी हुई थी। इसराइली सैन्य प्रवक्ता दानियल हगारी ने कहा कि हमास ने युद्ध विराम की मांगों को पूरा नहीं किया है और गाजा पर हमले जारी रहेंगे। हमास समर्थक मीडिया ने बताया कि वास्तव में रविवार को योजना के अनुसार वापसी शुरू हो गई थी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।